Market Mantra. Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav. With my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले अपना एसटीडी कोड 011 जरूर डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
थैंक यू।
चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस।
फर्स्ट द हेडलाइंस। रेलवेज रैशनलाइजेस पैसेंजर फेयर्स इफेक्टिव फ्रॉम फ्राइडे। Bill against fake fertilizers and pesticides to be introduced in the next session of Parliament, says Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan. And domestic markets to focus on infrastructure output data, rupee movement and global trends for queues next week.
रेलवे ने शुक्रवार से यात्री किरायों में संशोधन किया है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के खिलाफ एक विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा और अगले सप्ताह भारतीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डेटा, रुपए की स्थिति और वैश्विक रुझानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और वैभव दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं योगेश। योगेश जी, अपना सवाल पूछिए।
जी नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल फाइनेंशियल स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं और बैंक अकाउंट से पैसे खाली हो जाते हैं, तो उस केस में जो हमारा सेविंग अकाउंट है इसकी जगह पे अगर हम लिक्विड फंड यूज करें तो ये कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी, सेफ्टी के पर्पज से और रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा थोड़ा सा ज्यादा मिलता है उसके पर्पज से।
जी योगेश जी, आज के डिजिटलाइजेशन के टाइम पे जहाँ पे एक तरीके से आपके एडवांटेजेस बढ़ते हैं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिसएडवांटेजेस बढ़ने की भी संभावना रहती है। एंड इट इज वेरी गुड टू ऑलवेज यू नो बी ऑन द सेफर साइड, और ऐसा कुछ अगर कोई रास्ता दिखता है जो हेल्प कर सकता है इस चीज को डील करने में, तो एक स्ट्रैटेजी जो हमेशा काम आती है वो डाइवर्सिफिकेशन रहती है, चाहे जिंदगी में हो चाहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। तो अगर आप सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं और आप थोड़ा लिक्विड फंड्स में रखते हैं तो एक तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं उसको। सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहता है ध्यान रखना कि कभी भी आप कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ओटीपी किसी को भी कहीं पे भी, चाहे फोन पे चाहे मैसेज पे, कहीं ना दें। ऑलवेज बी देयर योर सेल्फ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन एंड दैट शुड होपफुली हेल्प प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी स्कैम्स।
Our next call is also from Delhi. We are joined in by RS Dahiya ji. Dahiya ji, swagat hai Market Mantra mein, apna sawal poochhe.
Sir, namaskar.
Ji, namaskar.
Sir, please keep this call interactive, don't disconnect it. I have asked this question earlier also. My question is that I want to invest about 10 lakh rupees in equity schemes and I don't need money for 5 to 7 years. And I want to invest only in those funds which are doing high performance, even in the bad time of last 15 months in the stock market. I want to request the expert if she can help me by giving 2-3 names.
भैया जी, जिस तरीके से आपने बोला कि आप कुछ ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो विच आर हाई परफॉर्मिंग एंड एट द सेम टाइम हैव मैनेज्ड टू प्रोटेक्ट द डाउनसाइड इन लेट्स से एनी काइंड ऑफ मार्केट फेजेस दैट दे हैव सीन. सो इन इक्विटी मार्केट्स एक तरीके की सेइंग है कि देर इज नो फ्री लंच. सो उसका मतलब ये रहता है कि अगर रिस्क रिटर्न बढ़ेगा तो वो ज्यादा रिस्क के साथ ही आएगा. इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है जिस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं. तो बेस्ट तरीका ये रहता है, ओके, यू हैव 10 लाख रुपीज एंड टू इन्वेस्ट इट फॉर लेट्स से अ पीरियड ऑफ 5 to 7 इयर्स. इक्विटी बिकम्स द बेस्ट एसेट क्लास एंड अ फ्यू कैटेगरीज दैट कैन बी लुक्ड एट कैन बी मल्टी कैप फंड्स, देन सम 20 to 30% काइंड ऑफ एक्सपोजर सिलेक्टिवली टूवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप्स विच कैन हेल्प यू जनरेट दैट हाई काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. बट एट द सेम टाइम यू विल एक्चुअली हैव टू यू नो लुक एट द फंड्स, लुक एट इफ देयर 5-year परफॉर्मेंस इज एक्सट्रीमली गुड बट हाउ देयर वर्स्ट ईयर्स हैव बीन अक्रॉस मार्केट टाइमिंग्स, अक्रॉस मार्केट फेजेस, सॉरी. सो ऑफकोर्स यू कैन पिक लेट्स से 2 फंड्स फ्रॉम मल्टी कैप कैटेगरी, 1 फ्रॉम स्मॉल कैप एंड 1 फ्रॉम मिड कैप. And of course, if required, you can increase the number of funds, let's say to up to 6 funds because of the 10 lakh kind of investment amount that you have. Just make sure to invest in small amounts because SIP is what helps you protect psychologically. Even if, let's say, you are in a fund which is giving you high performance, but at the same time, it because we cannot predict the future. Let's say it has always protected the downside, but there comes some unprecedented event like COVID and it is not able to do that in those down times. Jee. At that time, if you would have invested lump sum, that would hit you hard psychologically, you know, making you to exit the fund, which is not desirable because a 5 to 7 year kind of horizon requires continuous investment. So, right. So, SIP allocation to 2 to 3 multi-caps, 1 small cap, 1 mid-cap should help you.
बिल्कुल स्नेहा, हमारे साथ दिल्ली से ही एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका नाम है अमित. अमित जी, कृपया अपना सवाल पूछिए.
हाँ मैडम नमस्ते. स्नेहा मैडम नमस्कार. मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सेक्टर ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने हेल्थ केयर फंड में लगाया था, इंडिया अपॉर्चुनिटी में लगाया है, उसके बाद मॉन्यूमेंट फंड है, तो ये इनका मैं देख रहा हूँ कि मतलब ऑलमोस्ट मेरे अलग अलग कंपनीज में मैंने 3-4 जगह पे लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और पिछले 3 से 4 साल हो गया मैम, इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न इतना नहीं दिखाई दे रहा है. क्या मुझे स्विच करना चाहिए वहां से या वेट करना चाहिए?
जी अमित जी, ये कंसर्न बिल्कुल ही आपका वैलिड है बिकॉज सेक्टर और जो थीम बेस्ड फंड्स होते हैं उनका अंडरलाइंग जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो एक तरीके से आपको सोच के चलना चाहिए दैट वहां कुछ ऐसे मार्केट के फेजेस आएंगे जब इनकी परफॉर्मेंस जब गिरेगी तो वो काफी ज्यादा नीचे जा सकती है. जैसे आपने बोला मोमेंटम फंड्स, ये फंड्स की प्रदर्शन जब मार्केट बहुत ही तेजी से बढ़ रही होती है तो इनका काम ही यही है कि आपको काफी अच्छा अल्फा देंगे ओवर देयर बेंचमार्क्स. बट कुछ 1.5 साल से मार्केट एक तरीके से साइडवेज रही है, कभी गिर रही है या फ्लैट रह रही है, तो उस टाइम के लिए ये सेक्टर या ये थीम वर्क नहीं करता है. इसलिए बेस्ट तरीका ये रहता है, अगर आपको इन सेक्टर्स या थीम्स में बिलीफ है और आप चाहते हैं कि आप इनमें एलोकेशन रखें टू जनरेट सम अल्फा फॉर योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप इनको कुछ 10% से ज्यादा अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का ना बनने दें. तो अगर आज के टाइम पर वो उतना नहीं बने हुए हैं तो फिर देर इज नो हार्म कि आप बने रहें, बिकॉज लॉस में अभी एग्जिट क्यों ही करना है अगर ये उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है. एंड जो आपका कोर इक्विटी है वो आज भी डाइवर्सिफाइड फंड्स में है, लेट्स से फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स या लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, तो इट इज ओके. इन फंड्स को आप रहने दीजिए, जब आपने इतना धैर्य रखा है तो क्या पता आगे जाके वो वर्क कर जाए.
श्रोताओं, आइए जाने अपनी पहली खबर को और विस्तार से. इस महीने की 26 तारीख से रेल किराए में संशोधन किया जा रहा है. सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
इससे अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसे की दर से वृद्धि की जाएगी। मेल, एक्सप्रेस और एसी गाड़ियों में ये दर 2 पैसे प्रति किलोमीटर होगी। उपनगरीय इलाकों और मासिक सीजन टिकट के किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। रेलवे के अनुसार किराए में वृद्धि से लगभग 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। रेलवे ने बताया है कि पिछले दशक में रेल ढांचे में काफी वृद्धि हुई है और बेहतर संचालन के लिए जनशक्ति को बढ़ाया जा रहा है।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज गिवन असेंट टू द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण Vikasit Bharat G. Ramji Bill 2025. The Parliament had earlier passed it during the winter session. The Act enhances the statutory wage employment guarantee to 125 days per financial year for rural households. The Vikasit Bharat G. Ramji Act replaces the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MNREGA, 2005.
श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपकी सहूलत के लिए नंबर्स को दोहराना चाहूंगी। ये नंबर्स हैं 2331444, 2342105 और 2331046। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे सामने बैठी हुई हैं, उपस्थित हैं स्नेहा सूरी जी, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप अपने सवाल इनसे पूछ सकते हैं।
एब्सोल्युटली, द नंबर्स आर 2331444 2342 1050 एंड 2331046 कॉलर्स ऑफ आउटसाइड दिल्ली, प्लीज पुट द प्रीफिक्स 011। Sneha ji, we usually see a lot of upheavals in the market that we have been seeing, as you were just telling one of our callers, in the past 1.5 years. What would be your suggestion to those investors who are just new to the markets, who have just joined in the past 2 or 1.5 or 1 year? They've seen a lot of red in their portfolio. They don't know about all the great expectations that other investors have or have seen, which come from the great returns that have come in the past 10 years. What would be your suggestion and how to safeguard their financial investments online, please?
Right. So you very well framed it, that the people who are now entering have entered because they've seen the double digits that we've seen in, let's say, the last 2 to 3 years. And with that kind of expectation, when one enters and sees the portfolio in red, that hits you hard. That is why time has a role to play, and it is only when you have some time in your hand that you enter equity markets. So some surplus and some 5 year plus kind of an horizon is when you should think of entering equity markets. At the same time, you should not invest in, let's say, any kind of product which is showing you brilliant 1 year returns. Because what matters is, as I was telling one of our users, how the fund or the any kind of market related instrument has performed when the markets bled. That is what eventually tells you how your portfolio is going to be sooner or later.
जी स्नेहा, जानते हैं कि अगली जो हमारे पास जो क्वेरी आ रही है वो दिल्ली से आ रही है, और वो क्या है? दिल्ली से हमें केशव कॉल कर रहे हैं। केशव जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
हेलो, नमस्कार मैडम।
नमस्कार।
हेलो
जी, आपकी आवाज पर्याप्त आ रही है।
हाँ जी, म्यूचुअल फंड में लमसम अगर हम एक साथ पैसा लगा दें 2-4-5 साल के लिए, और अगर हमें बीच में इसको विड्रॉ करना पड़ता है, तो उसका उसमें पेनल्टी लगती है, जैसे एफडी हमने करा रखी है, एफडी में पेनल्टी लग जाती है। तो ये म्यूचुअल फंड या एफडी में कौन सा हमें बेनिफिट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इतना हमें जानकारी नहीं है
जी। केशव जी, जो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आप कंपेयर कर रहे हैं वो काफी डिफरेंट है। एफडी एक तरीके से आपको गारंटीड रिटर्न्स देती है, और म्यूचुअल फंड्स में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको कंप्लीट गारंटी और कैपिटल प्रोटेक्शन ऑफर करता है। ये मैं आपको एक डिफरेंस अपफ्रंट बताना चाहूंगी। जो आप जानना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर आप लमसम पैसा किसी म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो आपको पेनल्टी लगती है। जी हाँ, बिल्कुल। दो तरीके के मोटे मोटे म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, एक डेट बेस्ड रहते हैं और एक इक्विटी मार्केट लिंक्ड, जो शेयर बाजार हम कहते हैं उससे लिंक्ड रहते हैं। शेयर बाजार में जब आप एक साल तक बने रहते हैं तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है, अगर आप उसके विदिन निकाल लेते हैं, और उसके बियॉन्ड भी आपको टैक्स देना पड़ता है, बट आपका कुछ 1,25,000 तक वो एग्जेम्प्ट रहता है। और जब आप किसी डेट फंड में रहते हैं तो आपके टैक्स स्लैब पे टैक्स्ड होता है, जैसे कि एफडीज में भी रहता है। तो यहाँ पे ज्यादा बेटर ये नहीं है कि आप टैक्स पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करें। आप इन्वेस्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की चॉइस इस तरीके से करिए, अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव से कम्प्लीटली फाइन रहते हैं और आप, जैसे मैंने पहले बताया था, 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं, तो आप इक्विटी फंड्स में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड नाम के एक फंड्स होते हैं जिनमें आप खुद से ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वही रहता है कि आप 1 साल तक तो उसमें बने ही रहिए अगर आप टैक्स पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। बट जैसे मैंने बोला, टैक्स बचाना से हमारी इन्वेस्टमेंट या फिर आगे की जो हमें पूंजी को बढ़ाना है वो नहीं बनता है, वो इस सोच से बनता है कि आपके पास ये टाइम है, आप लगे रह सकते हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
जी, गाजियाबाद से हमारे साथ प्रणव जुड़ रहे हैं। प्रणव जी, अपना सवाल पूछिए।
हेलो
जी, अपना सवाल पूछिए।
जी गुड इवनिंग टीम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने SBI इनोवेटिव फंड में अपने पैसे लगा रखे हैं पिछले 1.5 साल से एंड रिटर्न कुछ अच्छा आ नहीं रहा है और अमाउंट जो है वो है लमसम में था 10 लाख रुपीज, तो इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर इससे मेरे को मूव आउट होकर किसी और फंड में लगाना चाहिए पैसे?
जी प्रणव जी, जो कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं, मतलब इनोवेशन फंड्स जो होते हैं वो हर AMC का एक डिफरेंट तरीका रहता है, इनोवेशन थीम के लिए वो आपके लिए एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनाते हैं। अब जो बाकी के फंड्स हैं इस कैटेगरी में, वो आज के टाइम पर सभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। सीम्स लाइक ये दिस थीम इज नॉट रियली वर्किंग आउट इन द करंट मार्केट एनवायरमेंट, बट हालांकि आपने मेंशन करा 10 लाख, बट आपने ये नहीं बताया कि ये एज अ परसेंटेज ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो कितना है। जैसे मैंने पहले बोला, अगर ये परसेंटेज टर्म्स में बहुत मैसिव आपके पोर्टफोलियो का नहीं है तो आप इसमें अभी बने रहिए, बट अगर ये मैसिव है तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि आप यहां से निकल के डाइवर्सिफाइड जैसे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप जैसी कैटेगरीज में जा सकते हैं। दूसरा, अगर ये जो मेरा पहले पॉइंट बताना मिस हो गया था, अगर ये छोटा हिस्सा है बट आपको रात रात को उठ के चेक करना पड़ता है ये अभी भी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, विच मीन्स कि आपने जिस पर्पस के लिए वो इन्वेस्ट करा था, विच इज टू सेफगार्ड योर यू नो फ्यूचर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, तो ये मीट नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट में ही आपको पीस नहीं दे पा रहा है। इन दैट केस आप जरूर यहां से निकल के डाइवर्सिफाइड में रहिए। मैं मेंशन करना चाहूंगी कि लमसम का माध्यम मेरे अकॉर्डिंग, मेरे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं रहता है, एंड इट इज एक्चुअली फॉर दीज टाइम्स ओनली दैट यू नो रियलाइज कि अगर ये आज 5,000 होता, 10 लाख ना होता तो उतना वरी नहीं हो रहा होता।
Our next call is from Faridabad. We're joined in by Narendra. Narendra, स्वागत है मार्केट मंथ में, अपना सवाल पूछें।
हेलो, गुड इवनिंग सर।
जी नमस्कार।
अच्छा, मैंने SBI का फोकस फंड और लार्ज कैप फंड, IT फंड और इसमें हेल्थ केयर में 1 साल से इन्वेस्ट किया हुआ है SIP के थ्रू, अभी स्टॉप कर दिया SIP, तो अभी कोई रिटर्न का कैसे क्या रहेगा, ये फंड ठीक है या कैसे?
जी नरेंद्र जी, पहली बात, आपने 2 डाइवर्सिफाइड फंड्स के नाम लिए थे, रीजनेबली डाइवर्सिफाइड। एक आपने बोला फोकस्ड फंड और एक आपने बोला SBI लार्ज कैप। ये दोनों फंड सही फंड्स है। लार्ज कैप एक्सपोजर SBI लार्ज कैप भी आपको दिलाता है, SBI फोकस भी काफी लार्ज कैप ओरिएंटेड है, वो भी आपको दिलाता है। SBI फोकस की हाल फिलहाल में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लार्ज कैप थोड़ा सा परफॉर्मेंस में रिलेटिवली नीचे चल रहा है, बट उसमें कोई वरी की बात अभी नहीं है। जैसे आपने मेंशन करा, आपके पास हेल्थ केयर और IT भी हैं, जैसे कि अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, ये सेक्टर बेस्ड फंड्स हो जाते हैं, तो इनको एक्सपोजर वाइज आपको बैलेंस करना चाहिए, 10% से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो का ना रहे। एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहां मेंशन करना चाहूंगी, आपने बोला आपने 1 साल में SIP रोक दी, वो मेरी नजरों में थोड़ा सा सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे और अगर आपके पास वो सरप्लस है तो आप बिल्कुल फोकस्ड और लार्ज कैप में कंटिन्यूड रख सकते हैं अपनी SIP। अगर कोई मान लीजिए कॉन्स्ट्रेंट है जिस वजह से आपने स्टॉप करा, तो इट इज ओके, आप इसमें फोकस्ड और लार्ज कैप में एग्जिट नहीं करिएगा, हेल्थ केयर और IT में आप अपना एक्सपोजर मैनेज करिएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ये सारे फंड्स आपने एक ही AMC के लिए हुए हैं, विच इज SBI। ज्यादा बेहतर ये रहता है डाइवर्सिफिकेशन जब हम फंड लेवल पे करते हैं, हमें AMC लेवल पे भी करना चाहिए, तो मेरी नजर में ये ज्यादा फीजिबल है अगर आप लार्ज कैप एक्सपोजर एक और AMC से भी अगर इन्वेस्ट करें, ऑफकोर्स अगर आपके पास वो सरप्लस अमाउंट है तो।
बिल्कुल, रुख करते हैं आज की अगली खबर की तरफ। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार नकली उर्वरकों और कीटनाशकों से निपटने के लिए संसद के अगले सत्र में एक विधेयक लाएगी। उन्होंने भ्रामक टैग के साथ नकली उर्वरकों और कीटनाशकों की बिक्री पर चिंता व्यक्त की। श्री चौहान ने कहा कि बेईमान कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Foreign investors pulled out 14,185 crore rupees from the Indian equity market so far in December. However, as per depositories data, foreign portfolio investors or FPIs invested 915 crore in the debt general limits so far in December. The sharp withdrawal from equities follows a net outflow of 3,765 crore rupees in November. The current trend comes after a brief pause in October when foreign portfolio investors or FPIs infused 14,610 crore rupees, snapping a three-month streak of heavy withdrawals. FPIs sold equities worth 23,885 crore rupees in September, 34,990 crore rupees in August, and 17,700 crore rupees in July.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में डिब्रूगढ़ जिले के नाम रूप में 10,601 करोड़ रुपए की लागत वाले उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन को सशक्त बनाना और कृषि वृद्धि को समर्थन देना है। ये संयंत्र प्रतिवर्ष 12,70,000 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस संयंत्र से उर्वरक आयात पर निर्भरता कम होगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा।
स्नेहा जी, मूविंग ऑन अगेन टू शॉर्ट टर्म नीड्स दिस टाइम, इफ इन्वेस्टर्स अगेन वी टाइम एंड अगेन लिसन टू द फैक्ट दैट इन्वेस्टर्स पुल आउट ऑफ द मार्केट स्पेशली विद एक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स before or maybe in 1 year or 2 years or before 5 years span, if there's a need, let's say, or whatever we read when we read good authors on mutual funds, we read that we must know our needs first. If the needs are within 5 years, what would be your suggestion to our investors? Where should they be putting in their money? And also, is there any mutual fund or a class of mutual funds which is just like the PPF, which gives a similar or a little higher return but with the same amount of safety and guarantee?
So upfront, if something that I can mention is the last bit that you mentioned, if for the same safety and guarantee, there is a mutual fund product that can offer PPF kind of returns. So no, with the same kind of safety and guarantee, even in our minds, that question should actually not be, you know, attuned to that kind of, let's say, frame, because that would be wrong. Right. And that is why we see occasions when investors pull out. Because the wrong expectation versus the wrong investment product that they are coming in. To cater to the short-term needs, there is definitely two set of funds that can be looked at. One would be liquid funds, where you can invest for, let's say, a few days to a year. Secondly, one can look at short-duration kind of funds, where somebody can invest for, let's say, up to 3 years for their debt allocation to build that fixed income allocation and the safety that you are referring to in their long-term portfolio. And thirdly, for somebody, let's say, who wants a mix of equity and debt, equity savings is also another set of category that can be looked at.
Great. And investors focus a lot on investment plans, AMCs, and different equity-linked schemes. What should be the exit strategy one should follow?
Absolutely. So when it comes to exit strategy, there is no bigger trigger than your needs, like we have been discussing. Gee. So one should, of course, upfront think of the needs that can come in the long term. But all said and done, life is based on unpredictability, right? True. And so your investments can hit, let's say, can trigger an exit only basis the unpredictability that comes in. No ifs and buts. If something requires you to pull out that money, a non-negotiable situation has come in, you do not really think of the underperformance and outperformance. You really need to deal with that goal first. So that should be the first trigger. And secondly, of course, if your goal is near, then definitely you invested in the very first place to achieve XYZ amount for that goal only.
Right? Absolutely. And with changing markets and international scenarios, we've seen a lot of sectors do well. Would your advice to all the sectoral investors be still the same, that do not keep your sectoral investments more than 10 or maybe 15%, or would it change with changing times?
No, actually changing markets highlight one particular aspect. Jee. As clean as somebody can, you know, even think of, every sector has its day. And you do not really know if it's your day or not.
Absolutely.
Right. And that is where exposures, you know, certain asset allocation, certain limitations to your exposures becomes the key factor that is in your control. All other things aren't. So according to me, that really works well.
Well, thank you, Sneha-ji, for those insightful views. Let's move on to our next story. After declining for two straight weeks, domestic benchmark indices are expected to take cues from a mix of key domestic and global factors in the holidays shortened next week. Last week, the Sensex declined 0.4% and the Nifty dropped 0.3%. Next week, investors are likely to closely monitor the infrastructure output or the month of November 2025. Ministry of Statistics and Programme Implementation will release the data on Monday. Market movements are likely to be impacted by FII inflows, any developments in India-US trade talks, movements in the rupee and global cues.
स्नेहा जी, मैं आपसे अपने श्रोताओं की तरफ से ये सवाल पूछना चाहूंगी. कई बार प्रोग्राम में ये सवाल आए हैं, वैभव, मैं आपसे भी बताऊं कि हम किस तरीके से, अगर हमारे हाथ में एक महीने में 5,000 रुपए बच रहे हैं, तो किस तरीके से हम अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को बिल्ड करें?
व्हाट शुड बी द डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली, हाउ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड?
राइट. सो
मैं चाहूंगी कि आप इसे उदाहरण के साथ बताएं.
बिल्कुल. अगर मान लीजिए आपके पास 5,000 बच रहे हैं
जी,
और वो काफी मुश्किल से बच रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन
नहीं,
वाला
वो 5,000 हमारे पास है कि हमें इन्वेस्ट करना है.
ठीक है
जी.
तो मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन आपके माइंड में शायद बाद में आएगा. पहले आएगा कि आप कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लें कि ये आप जब हर महीने 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ रीजनेबल समय में जब वो बढ़ोतरी होती हुई दिखती है तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. उसके बाद आप सोच सकते हैं, जब वो एक एलोकेशन बन जाती है, अक्यूमुलेशन बन जाती है, कि अब हम सोचते हैं कि हम अपनी एसेट एलोकेशन क्या रखें, हम और फंड्स में इन्वेस्ट करें, और कौन सा ऐसा फंड है जो आपके पोर्टफोलियो को आपके गोल तक पहुंचाने में मदद करेगा.
बिल्कुल.
तो जो दिमाग में रखने वाली बात हो जाती है कि हर महीने हम ये 5,000 डालें, एक ऐसा प्रोडक्ट जहां पे आपको जो ये शेयर बाजार के उतार चढ़ाव होते हैं उनको कंट्रोल करने का एक तरीका मिलता है, वो रहते हैं हाइब्रिड प्रोडक्ट्स. So, जब आपके पास हर महीने सैलरी के बाद, एक्सपेंसेस के बाद 5,000 बच रहे हैं
जी,
तो आप
तो उसका डिवीजन कैसे करें, किस तरीके से बंटवारा करें?
बंटवारा करने की एक्चुअली उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है.
अच्छा.
आप वो 5,000 लेकर एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या फिर एक इंडेक्स बेस्ड निफ्टी 50 फंड में आराम से लगा सकते हैं. अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डर रहता है तो उसको 2,500 के दो फंड्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन्हीं दो कैटेगरीज के लिए. और इस समय आप वर्क इस पे नहीं कर रहे हैं कि आप डिवाइड कैसे करें, आप इन्वेस्ट कब तक करें, आप वर्क इस पे कर रहे हैं टू एक्सपीरियंस व्हाट मार्केट हैज टू ऑफर, जो ऊपर नीचे वो होती रहती है, जो लाल ग्रीन ये दिखता रहता है, उसको डील करने के लिए पहले 3-4 साल तो इसी में लगाने चाहिए कि हम समझे क्या चल रहा है. फिर जब 3 साल बाद वो दिखता है कि इतना बन गया है पैसा, तब आपको कॉन्फिडेंस आते हैं और तब आप इन प्रिंसिपल्स के ऊपर कैसे वर्क करें सोचना चाहिए.
जी, मतलब कि मार्केट की नब्स को पहचाने.
बिल्कुल.
और फिर उसके साथ जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें.
एब्सोल्युटली प्राची, सो आई बिलीव दैट नाउ यू आर रेडी टू मूव इन और डाइव इन द मार्केट एंड देन अर्न सम ग्रेट प्रॉफिट्स. वी मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन लास्ट वीक अमिड कंसर्न्स ओवर पोटेंशियल सप्लाई डिसरप्शंस स्टेमिंग फ्रॉम अ पॉसिबल यूएस ब्लॉकेड ऑफ अ वेनेजुएलन oil tankers, or markets await developments on a potential Russia-Ukraine peace deal. Brent crude oil prices futures dropped over 1% last week to settle at $60.47 per barrel on Friday, while US crude slumped 1.6% during the week to close at $56.52 per barrel.
स्नेहा जी, कार्यक्रम में आने और हमारे तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
जी, धन्यवाद.
And before we close, a look at the headlines once again. Railways rationalizes passenger fares effective from Friday. Bill against fake fertilizers and pesticides to be introduced in next session of Parliament, says Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan. And domestic markets to focus on infrastructure output data, rupee movement and global trends for cues next week. And that's it in this edition of Market Mantra.
Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Bye.